Namaskar and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today being a Sunday, we shall also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. Well, you may call us on the numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट आकार रस्तोगी। आकार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
जी धन्यवाद।
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा।
Yes, thank you, Subodh. Let's begin with the headlines, friends. Prime Minister Narendra Modi says situation in West Asia has created challenging times for India's energy needs, expresses confidence nation will emerge victorious. Gold and silver prices display mixed trend last week, and domestic investors to focus on geopolitical developments, commodity prices and FII activity for queues next week.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि पश्चिम एशिया संघर्ष से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पनपी चुनौतियों पर देश विजय प्राप्त करेगा। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला रुख और अगले हफ्ते देश के निवेशकों का फोकस रहेगा भू राजनीतिक गतिविधियों, वस्तुओं की कीमतों और विदेशी सांस्थानिक निवेशकों की गतिविधियों पर।
Well, before we move on any further, here's a disclaimer for all our listener friends. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
और पहली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल का संकट बढ़ रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कोविड काल की तरह मौजूदा संकट से भी भारत उबर जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे सामूहिक रूप से इस चुनौती का मुकाबला करें।
जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है।
श्री मोदी ने यह भी कहा कि इस मामले में अफवाह फैलाने वाले लोग देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अफवाहों के बहकावे में न आने और सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की। अभी जो हालात है लालिमा, जो हम देख रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जो हालात हैं,
जी जी,
उसको लेकर कई तरह की चिंताएं पनप रही हैं और जाहिर है कि जो हमारे निवेशक हैं वो भी उन चिंताओं से घिरे हुए हैं और शायद हमारे जो आज के जो कॉलर्स होंगे वो कुछ न कुछ उस पर भी सवाल करते रहेंगे। हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
हाँ सर, जैसे मैंने तो स्टडी किया, फोकस फंड जो होता है वो 30 स्टॉक को लेके चलता है, तो मैंने देखा 4-5 साल के सभी एएमसी का, तो हमको ऐसा लगता है कि उसमें रिटर्न जो है कम है, जबकि उसमें काफी ज्यादा होना चाहिए 30 स्टॉक के हिसाब से, क्योंकि मैंने कुछ 2-4 जो है डीमैट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट किया, तो उसमें 200-300% किसी स्टॉक में आदमी को रिटर्न मिला हुआ है। तो उस हिसाब से हमको लगता है उसमें कम है। पहला तो ये एक मेरा सवाल है। अरे जो बजाज फिनिशर नया एएमसी आया है दो तीन साल के बाद, दो तीन साल से, तो सर वो कैसा एएमसी है? नाम ही तो है उसका, तो सर प्रकाश डाले बस।
जितेंद्र जी, जो आपका पहला सवाल है फोकस्ड फंड्स को लेकर के, देखिए आप एकदम सही कह रहे हैं कि जो एक फोकस्ड फंड होता है उसका जो पोर्टफोलियो होता है वो 30 स्टॉक्स के अंदर ही रहता है। ये इसलिए क्योंकि जो सेबी द्वारा फोकस्ड फंड्स के लिए मैंडेट है वो यही है कि आप वो फंड्स 30 स्टॉक्स से ज़्यादा में निवेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये फंड्स में एक लिमिटेशन होती है 30 स्टॉक्स की, तो उसके वजह से इसका जो एक पोर्टफोलियो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। यानी कि इसमें दोनों ही संभावना रहती है, ये भी हो सकता है कि जब मुनाफा होगा तो ये फंड ज़्यादा रिटर्न्स देगा, और जब इस फंड को थोड़ा सा नुकसान होगा या जब इसके स्टॉक्स जाएंगे तो ये हो सकता है ज़्यादा गिरे। वो सिंपली इस वजह से होता है कि जो यहाँ पे आपका पैसा है वो कम नंबर ऑफ स्टॉक्स में बटा हुआ है, कम डाइवर्सिफिकेशन हुई है, तो इसलिए ये वाले जो फंड्स होते हैं ये कंपैरेटिवली थोड़े से एक नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड के मुकाबले ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न फंड्स में आते हैं। अब रही बात कि वो फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है या कम रिटर्न दे रहा है, वो डिपेंड करता है पूरी तरीके से कि उस जो फंड का पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है उसके जो स्टॉक्स चुने गए हैं उसके फंड मैनेजर द्वारा वो कॉल्स कितनी सही रही है, क्योंकि यहाँ पे एक जो फंड मैनेजर का रोल होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि जो आपका पूरा का पूरा पैसा है वो कम स्टॉक्स में बटा हुआ है, तो यानी कि जो एक स्टॉक का चुनाव है वो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो बाकी बिना जानकारी के कि आप किस पर्टिकुलर फंड के बारे में कह रहे हैं और भी कुछ उस पे ज़्यादा कमेंट करना मुश्किल रहेगा, बट ये फंड्स नॉर्मली थोड़े से हाई रिस्क हाई रिटर्न में रहते हैं। दूसरा आपका सवाल है जो बजाज फिनसर्व एएमसी के ऊपर, देखिए अभी हालांकि में काफ़ी सारी एएमसीज आई है और जो एक हमारे रेगुलेटर द्वारा जो एक मिनिमल रिक्वायरमेंट्स है, जो पूरा लॉ है वो इतना स्ट्रिंजेंट है कि सारी चीज़ें पास करके आती है। एंड बाकी इसके फंड्स में निवेश करने के लिए मैं कहूँगा कि डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ों पे, थोड़ा सा एक ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा अगर आप इक्विटी की तरफ जाते हैं और आपके गोल्स क्या है उस हिसाब से।
All right. Well, the government has said that adequate stocks of petrol and diesel are available at all petrol pumps across the country and reiterated its advice to the public not to believe in rumors. The Ministry of Petroleum and Natural Gas said domestic LPG supply remains normal with over 55 lakh cylinders delivered daily. It said commercial LPG supply has reached about 70% of pre-crisis levels. Natural gas is being prioritized for households and transport, while PNG connections are being expanded rapidly.
और एक बार फिर हम श्रोताओं को याद दिला दें कि हम म्यूचुअल फंड से जुड़े उनके सवालों को कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। अगर वो म्यूचुअल फंड से जुड़े कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से तो फ़ोन कर सकते हैं 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 पर।
I think your repetition of numbers had its effect, magic effect. We are now joined by Yogesh from Delhi. जी योगेश जी, सवाल पूछिए अपना।
सभी को नमस्कार। मेरे दो सवाल हैं। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि हमने एक एक्सपर्ट के को ये कहते हुए सुना था कि ऐसी मार्केट में कैपिटल प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, यानी कि कैपिटल को बचाना बहुत जरूरी है। तो कैपिटल प्रिजर्वेशन म्यूचुअल फंड के निवेशक के लिए ऐसी मार्केट में कैसे किया जा सकता है? क्या उसको डेट में कन्वर्ट करना चाहिए तो वो लॉस बुक करेगा, और नया इन्वेस्टमेंट ना करे तो वो कम भाव पे खरीद भी नहीं पाएगा, तो कैसे कैपिटल प्रिजर्व कराया जा सकता है ऐसी मार्केट में? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि फ्लेक्सी कैप के बजाय, क्योंकि उसका ज्यादातर एलोकेशन लार्ज कैप की तरफ रहता है हमेशा, उसके बजाय लार्ज मिड कैप कैसा ऑप्शन है?
योगेश जी, जो आपका पहला सवाल है कैपिटल प्रिजर्वेशन को लेकर के, देखिए इसका जो एक सबसे सिंपल तरीका है वो है कि एक आप असेट एलोकेशन मेंटेन करें, जो भी आपके गोल्स है जितना भी आपका टाइम पीरियड है उसके हिसाब से आप ये तय करें कि आप कितना पैसा इक्विटी में रखना चाहेंगे और कितना फिक्स्ड इनकम में रखना चाहेंगे। मान लीजिए अगर आपने 70-30 यानी कि 70 इक्विटी में और 30 फिक्स्ड इनकम में चुनाव करा है, तो जो फिक्स्ड इनकम का 30% पोर्शन है वही एक ऐसा पोर्शन है जो आपके पोर्टफोलियो में एक ठहराव एक स्टेबिलिटी रहेगा। जिस टाइम मार्केट गिरेगी तो वहाँ पे एक हल्की सी स्टेबिलिटी रहेगा, आपके कैपिटल को एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन देगा, और ऐसी सिचुएशंस में ही होगा कि जो आपका फिक्स्ड इनकम का पोर्शन है वो 30% से बढ़कर ज्यादा हो जाएगा. हो सकता है 40 हो जाए और आपका इक्विटी क्योंकि मार्केट गिरा हुआ होगा तो 70 से नीचे गिर करके 60 हो जाए. तो वहीं पर आपके लिए एक मौका होता है कि आप थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम से उठा करके इक्विटी में डाले, एक एलोकेशन को रीबैलेंस करें और जब मार्केट गिरी हुई होती है तो उसी तरीके से आप वहां पर एक साइंटिफिक तरीके में, एक सिस्टमैटिक तरीके में आप इक्विटी में और ज्यादा निवेश कर पाते. और वहीं पर जब मान लीजिए अगर मार्केट बढ़ता है तो यही आपका जो इक्विटी का पोर्शन है ये हो सकता है कि 70 से बढ़कर के 80% हो जाता और वहां पे आप 10% का प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा फिक्स्ड इनकम में मूव कर देते. तो देखिए मार्केट में कैपिटल प्रिजर्व करने का जो सबसे आसान तरीका है एक स्टेबिलिटी लाने का अपने पोर्टफोलियो में वो यही है कि कुछ पोर्शन आप अपना फिक्स्ड इनकम में रखें. और ये जो पोर्शन है ये तय करा जा सकता है इस बेसिस पे कि आपके गोल में कितना समय है और आप में कितना रिस्क उठाने की क्षमता है. जितना ज्यादा समय उतना ज्यादा इक्विटी की तरफ रहिए. आमतौर पे अगर 5 साल से ज्यादा का समय है तो एक आम निवेशक के लिए ये कहा जाता है कि 70% इक्विटी में रखिए, 30% फिक्स इनकम में रखिए. अगर मान लीजिए जो आपका गोल है वो बहुत ही करीब है, मान लीजिए सिर्फ 2 साल 2.5 साल में है और किसी एक ऐसे गोल के लिए है जो कि एकदम ही नॉन नेगोशिएबल है, मान लीजिए जैसे बच्चे का आपको पता है कि पढ़ाई के लिए चाहिए, वो कॉलेज में एडमिशन है 2 साल के बाद उसके लिए चाहिए, तो वहां पर आपका जो है कि फिक्स इनकम का पोर्शन बहुत ज्यादा होना चाहिए. हो सकता है पूरा आप 100% रखिए अगर सिर्फ 1.5 साल का ही समय बचा है तो वहां पे आपका कैपिटल भी प्रिजर्व रहेगा
जी.
एंड सेकंड ही टॉक अबाउट फ्लेक्सी कैप.
या सो देखिए फ्लेक्सी कैप आप एकदम सही कह रहे हैं. आमतौर पे जो ज्यादातर फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं उनका झुकाव लार्ज कैप के तरफ ज्यादा है. तो लार्ज एंड मिड में आप जा सकते हैं, वहां पे आपको मिड कैप में मिनिमम 35% मिलेगा. नहीं तो एक दूसरा जो अल्टरनेटिव है आप एक मल्टी कैप फंड का भी चुनाव कर सकते हैं. जो मल्टी कैप फंड है वहां पे बाय मैंडेट 25% तीनों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में उनको निवेश करना होता है. तो किसी भी टाइम पर अगर आप देखेंगे मिनिमम आपका 50% पैसा मिड और स्मॉल कैप में लगा होगा. तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोजर मिल जाता है मिड एंड स्मॉल कैप का. लेकिन उसी से एक थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे लार्ज कैप का एक्सपोजर कम होगा तो हो सकता है कि ये जो फंड्स है ये एक नॉर्मल फ्लेक्सी कैप फंड से थोड़े से ज्यादा वोलेटाइल रहेंगे. जब भी मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा तो ये थोड़ा सा ज्यादा आपको एक बम्पी राइड देंगे, बट लंबे समय में आपको वहीं पर थोड़ा अच्छा मुनाफा भी दे सकते
हैं जी. अगले कॉलर है राजीव दिल्ली से, स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
या नमस्कार जी, मेरा दो क्वेश्चन थे, आपस में रिलेटेड हैं. एक तो क्वेश्चन था डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर में जो म्यूचुअल फंड का लेने का तरीका होता है उसमें एक्सपेंस रेशियो को ध्यान में रखते हुए मतलब कोई अलावा और कोई एडवांटेज होता है. दूसरा ये कि अभी मैंने फरवरी और मार्च में अपने सारे रेगुलर फंड डायरेक्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं, तो डायरेक्ट में ट्रांसफर होने का अब ये क्या सारी इन्वेस्टमेंट नई की नहीं जाएगी, मतलब दैट विल बी ट्रीटेड न्यू, दैट्स इट.
राजीव जी देखिए जो सबसे बड़ा डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट में वो केवल और केवल एक एक्सपेंस रेशियो का है. सो बेसिकली एक जो दूसरा डिफरेंस आता है वो ये आता है एक एडवाइजर का, एक डिस्ट्रीब्यूटर का जो आपका हाथ पकड़ता है रेगुलर प्लान्स में. अगर एक सो बेसिकली जो रेगुलर प्लान्स है वो होते हैं उन निवेशक के लिए जो थोड़ा सा टेक सेवी कम है, वो उनको लगता है कि उनको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया कम है कि उनको कब कौन सा फंड खरीदना चाहिए. और जब मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं उनको अगर चाहिए कि कोई उनको यू नो काउंसलिंग दे कि आपको अभी डटे रहना है, आपको यू नो अभी मार्केट के नीचे गिरने से डर के यहाँ से हटके नहीं जाना चाहिए, एक अच्छे एडवाइज़र का ये पूरा रोल होता है जो कि थोड़ा आजकल मुश्किल भी है मिलना. बट अगर एक आप उनको कैच होल्ड कर पाते तो रेगुलर प्लान के साथ एक वो एक बेनिफिट होता है और उसी की वजह से उसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा होता है. डायरेक्ट प्लान्स आर बेसिकली फॉर अ DIY इन्वेस्टर. सो वहाँ पर आपको किसी और की सहायता नहीं मिलती, वहाँ पर आपको खुद अपना आप पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और उस वजह से एक्सपेंस रेशियो कम होता है. दूसरा इससे ही रिलेटेड सवाल जो है आपका कि आपने फेब और मार्च में अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स एक रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में कर दी, तो मेरी समझ में अगर आप एक जो कि मैं आपकी जितनी भी अभी तक हमारी बात हुई है उससे मैं ये अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि आप एक DIY इन्वेस्टर में हैं और आप एक इतनी समझ रखते हैं कि कौन सा फंड कब लेना चाहिए और मार्केट के गिरने पे जैसे कि अभी थोड़ा बहुत चल रहा है आप घबराते नहीं है, तो पहली बात तो मैं कहूँगा कि एक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है क्योंकि भले ही एक्सपेंस रेशियो में एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस देखता है हमारे को शुरू में आधा 1% का, बट जैसे जैसे ये इन्वेस्टमेंट हमारी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो आपका पैसा कंपाउंड होता रहता है अगले 15 साल में 20 साल में, ये केवल एक 1% का एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस बना देता है एक अच्छे पोर्टफोलियो में, ये कई दफ़ा करोड़ों का भी डिफरेंस बना देता है। और बाकी का बिल्कुल ये एक आपकी नई इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होएगा। जैसे अभी आपने रेगुलर से डायरेक्ट में डाला होएगा तो अभी तक के जो भी आपके कैपिटल गेन्स होंगे उन पे आपका कैपिटल गेन्स टैक्स एप्लीकेबल होएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। और ये एक तरीके से ऐसे ट्रीट होगा कि आपने अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी बेचती रिडीम कर लिया और अब एक नए फंड में आपने नई इन्वेस्टमेंट करी है, नया इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस तारीख से उसके लिए आगे के लिए कैपिटल गेन्स का ड्यूरेशन और अमाउंट कैलकुलेट होगा।
ऑलराइट, वी आर नाउ जॉइंड बाय विनोद फ्रॉम दिल्ली। जी विनोद जी, सवाल पूछिए।
पूरी माँ की टीम को मेरी तरफ से नमस्कार।
नमस्कार।
अब मैं एक्सपर्ट जी से यहाँ ये जानना चाहूंगा कि अगर रेगुलर प्लान के अंदर मैंने रेगुलर की एसआईपी को होल्ड करके फिर डायरेक्ट प्लान में स्विच कर दिया तो क्या वो जो फंड है उसी को वहीं से पार्क होने दें, सवाल नंबर एक। दूसरे, ये फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छे से नहीं मिलते हैं, जैसे जैसे उन्हें ढूंढते हैं फिर कॉन्टेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई चीजें ना कई बड़ी आइडियाज का डिफरेंस आ जाता है। तो ये रजिस्टर्ड जो होते हैं फिर प्लान ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? और एक छोटी सी बात और कि ये एक रिबैलेंसिंग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट बताते हैं एक्सपर्ट, तो ये रिबैलेंसिंग प्लस टैक्सेशन में क्या कैसे मैचिंग होनी चाहिए, टैक्सेशन और रिबैलेंसिंग? और
जी, जो आपका पहला सवाल है, रेगुलर प्लान में आपने एसआईपी को होल्ड कर दिया है और डायरेक्ट प्लान में स्विच कर दिया है। देखिए, अगर आपने अपने जो एक एग्जिस्टिंग फंड्स है रेगुलर में, अगर वहाँ पे से आपने स्विच फंक्शनैलिटी का यूज़ किया है तो मैं ये जान पा रहा हूँ कि जो वहाँ पे आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट थी वो पूरी की पूरी रेगुलर प्लान से निकल करके डायरेक्ट प्लान में आ गई होगी। और जैसे कि अभी हम पिछली कॉल पर बात कर रहे थे, ये एक नई इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट होगी। वहीं पर अगर आपने केवल इतना करा है कि आपने रेगुलर प्लान में अपनी एसआईपी बस रोक दी है, जो पैसे वहाँ पे आपने छोड़ दिए है और नई एसआईपीज आगे की एक डायरेक्ट प्लान में करिए, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बिल्कुल कर सकते हैं। जो पैसा आपका रेगुलर प्लान में है उसको आप वहाँ पे पड़े रहने दीजिए, अगर आप अभी एक टैक्स लाइबिलिटी नहीं इनकर करना चाहते, और उसको समय के साथ आराम आराम से मूव कर सकते हैं। बाकी आप अपने इंक्रीमेंटल एसआईपीज डायरेक्ट प्लान में चलते रहने दीजिए। और आप एकदम सही कह रहे हैं, आजकल थोड़ी सी दिक्कत हो गई है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के साथ, जो एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको ढूंढना थोड़ा सा दिक्कत का काम है। काफ़ी सारे एडवाइजर्स हैं, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। तो देखिए, इसका जो सबसे एक सही तरीका है कि जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलते हैं, जब भी आप किसी एडवाइजर से मिलते हैं, उससे आप क्वेश्चंस पूछिए। वो जब आपको कोई सा एक फंड सजेस्ट करते हैं, आप केवल सीधा जो उन्होंने नाम बताया उस पर इन्वेस्ट ना कर दीजिए। आप उनसे सबसे पहले तो समझिए कि वो उस फंड में क्यों निवेश करने को कह रहे हैं। आप उनसे उसके रिस्क पूछिए, आप पूछिए कि इसमें क्या खराब हो सकता है, आप यही वाला फंड निवेश करने को मेरे को क्यों कह रहे हैं। और भी अच्छा है कि अगर आपको किसी डिस्ट्रीब्यूटर का किसी रेफरेंस से मिल जाता है, जहाँ पे कि एक आपके किसी के नोन में से जिन्होंने कभी उनका अनुभव लिया हो, जो उनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ से आपको एक ये पुष्टि हो जाए कि हाँ, ये मेरे को अभी बस खाली फंड्स बेच करके गायब नहीं हो जाएंगे, बल्कि जब मेरे को बाद में इनकी असली जरूरत होगी तब भी अवेलेबल होंगे।
राइट, आई थिंक दैट वाज वेरी रेलेवेंट। और जब तक फाइनेंशियल एडवाइजर मिले ना मिले, मार्केट मंत्रा सुनते रहिए। जी, एंड नाउ यस, वी हैव टिंकू, रेगुलर कॉलर, ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम बिहार। हाँ जी टिंकू जी, सवाल पूछिए। हेलो,
लगता है टिंकू से हमारा संपर्क टूट गया है। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इस महीने यानी मार्च में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से रिकॉर्ड 1,13,810 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये एफपीआई की अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिकवाली है, जो अक्टूबर 2024 के 94,017 करोड़ रुपए से आगे निकल गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार मार्च में अब तक भारत के पूंजी बाजार से विदेशी निवेशकों ने 1,23,000 करोड़ रुपए निकाले हैं, लेकिन इसी अवधि में उन्होंने भारतीय ऋण बाजार में 5,376 करोड़ रुपए डाले भी हैं। एफपीआई की बिकवाली के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं उनमें बढ़ता हुआ वैश्विक तनाव, महंगा होता हुआ कच्चा तेल और रुपए की घटती कीमत सबसे अहम है। विदेशी निवेशक अब जोखिम से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके उलट देश के संस्थानिक निवेशक बाजार को लगातार सहारा दे रहे हैं और पिछले हफ्ते उन्होंने 26,897 करोड़ रुपए की लिवाली की। इससे एफपीआई की बिकवाली के प्रभाव से थोड़ी राहत मिली है।
You think, okay, we are now joined by Tinku, right? Oh, he's there from Bihar. Ji, Tinku ji, sawal puchhiye. Haan ji.
Namaste, sir.
Namaste, ji, 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 ji. Ji, sawal puchhiye.
Namaste, sir.
Namaskar.
Namaste, sir.
Ji, namaskar. Aap bataiye, Tinku ji, apna sawal puchhe.
Hello.
I think some problem in the line. Anyway.
Namaste, sir.
All right. Akar, we just talked about this news about FPI outflows from the Indian equities. The good news is that, had this happened a few years ago, decades ago, it would have been a disaster for the Indian economy and the markets particularly. But now we are quite stable. I mean, outflows happen, but we are quite stable. Don't you think that speaks volumes about the fundamentals, strong fundamentals of the Indian economy?
Yeah, definitely. And, we have been having a very good support from the retail investors. And, over the past, few years, like the investment of the domestic retail investors have increased very well, irrespective of the foreign investors.
Ji, agle caller jud gaye hain humse, Gurugram se RS Tahiya. Swagat hai aapka, sawal poochhe.
Hello.
Hello, ji, sawal poochhe.
Hello.
Hello, RS Tahiya ji.
Hello.
Oh, shayad hamari awaaz un tak nahi pahunch pa rahi hai. और
चलिए
सवाल हम तक नहीं पहुंचे।
समथिंग रॉन्ग विद द लाइंस, नेवर माइंड। वेल, इन द इंडियन बुलियन मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस डिस्प्लेड मिक्स्ड ट्रेंड इन प्रीवियस वीक। Precious metals remained volatile throughout the week as traders continued to navigate a barrage of headlines around potential ceasefire talks between the US and Iran.
जी, और बता दें श्रोताओं को कि भारतीय सर्राफा बाजार में पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में मिलाजुला रुख रहा। पूरे हफ्ते कीमती धातुओं में उतार चढ़ाव देखा गया और कारोबारी अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की बातचीत की संभावनाओं में उलझे रहे। एमसीएक्स में मई अनुबंध के लिए चांदी वायदा इस हफ्ते आधा प्रतिशत बढ़कर 2,27,954 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई। अप्रैल अनुबंध के लिए सोना वायदा में सप्ताह के दौरान 0.15% की गिरावट आई और यह 1,44,282 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। जून वायदा का कॉमेक्स गोल्ड फ्यूचर्स 1.8% गिरकर $4,500 प्रति ट्रॉय अंस के थोड़ा ऊपर बंद हुआ। कारोबारी अपना जोखिम कम करने के लिए सोना बेच रहे हैं। इसके अलावा मजबूत होते डॉलर और बढ़ते हुए ट्रेजरी यील्ड से भी सोना समेत कम मुनाफे वाली परिसंपत्तियों में दिलचस्पी कम हुई है। अगले कॉलर हमारे साथ हैं फरीदाबाद से, नरेंद्र। स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग।
ये मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, फोकस फंड, लार्ज कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, कॉन्ट्रा फंड और टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड और हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड। तो ये सारे लार्ज कैप में ही है, कैसे क्या है इनके, और इसमें चेंज कर सकते हैं क्या किसी को?
नरेंद्र जी, आपका जो पोर्टफोलियो है, पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। आपने अलग अलग स्ट्रैटेजीज को फोकस्ड फंड में, कॉन्ट्रा फंड में, जो एक अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती है, उनका चुनाव भी करा हुआ है और आपने फ्लेक्सी कैप फंड में भी निवेश किया हुआ है। तो जो एक आपका सवाल था कि क्या ये सारे लार्ज कैप फंड है, तो नहीं, ये सारे लार्ज कैप फंड्स नहीं है। इनमें, जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ, एक आपका फ्लेक्सी कैप फंड भी है। फ्लेक्सी कैप फंड लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में निवेश करता है। फिर एक जो आपने कॉन्ट्रा फंड बताया, कॉन्ट्रा फंड्स भी आपके यूजली गो एनीवेयर फंड्स होते हैं, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। बट एक इनका जो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होती है, एक जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। फोकस्ड फंड्स नॉर्मली, जैसे कि हम लोग इस एपिसोड के शुरुआत में बात कर रहे थे, वो केवल 30 स्टॉक्स में निवेश करते हैं। लेकिन वो एक आपका ज्यादातर जो फोकस फंड्स है वो फ्लेक्सी कैप की तरफ होते हैं, लेकिन कुछ लार्ज कैप की तरफ भी है। बिना फंड का एग्जैक्ट नाम जाने थोड़ा सा मेरे लिए बताना मुश्किल रहेगा, मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो एक पर्टिकुलर फंड कैसा कर रहा है या उसमें चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। वहीं पर आपने एंड में बोले टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर फंड्स, ये जो दो फंड्स है ये एक सेक्टोरल फंड्स है, यानी कि ये केवल उस एक सेक्टर की कंपनीज में ही निवेश करते हैं। जैसे कि जो टेक्नोलॉजी फंड है वो केवल टेक कंपनीज के स्टॉक्स में निवेश करेगा, आईटी कंपनीज के स्टॉक्स में करेगा, और जो एक हेल्थ केयर फंड है वो जितने भी हेल्थ केयर कंपनीज है केवल उनके स्टॉक्स में करेगा। तो ये दो फंड्स एक थोड़े से हाई रिटर्न हाई रिस्क वाले फंड्स है। यहाँ पर पे आपको देखना ही होगा कि जब मार्केट गिरता है तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा गिरे, और जब ज़्यादा उठेगा तो ज़्यादा दे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा वोलेटाइल रहेंगे। बट ओवरऑल एक आपका मेरे को काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दिख रहा है। यहाँ पर मेरी बस आपको एक ये सलाह रहेगी कि आप जब निवेश कर रहे हैं तो आपको बीच में एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश करते रहना है, बीच में अपना निवेश रोके ना, एसआईपी के जरिए करते रहे, अपने फंड्स को साल में एक दफ़ा देख ले कि वो अच्छा कर रहे हैं, उनकी रेटिंग क्या चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और जब मार्केट गिरे या किसी तरीके के हिकअप्स आए, कुछ ग्लोबल अनसर्टिनिटी हो, तो घबरा करके पैनिक में आकर के एकदम से उसमें से पैसा ना निकाले।
चलिए आपको अच्छे मार्क्स दे दिए आकार ने इन्वेस्टमेंट के लिए। वी मूव ऑन, वी आर नाउ जॉइंड बाय आरएस दहिया फ्रॉम वेरी क्लोज टू दिल्ली गुरुग्राम। यस दहिया जी, सवाल
मैम। नमस्कार।
नमस्कार जी, सवाल पूछिए जी।
माय क्वेश्चन इज दैट व्हाइल डूइंग रीबैलेंसिंग हाउ टू डू इट इन ए टैक्स एफिशिएंट मैनर, बिकॉज व्हेनेवर वी रिडीम और चेंज ओवर फ्रॉम वन स्कीम टू अदर स्कीम वी हैव टू पे कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, हाउ टू हैंडल इट इन ए टैक्स एफिशिएंट मैनर, प्लीज एडवाइस।
धैया जी, the best way to rebalance in a tax efficient way is to take advantage of the 1.25 lakh exemption limit. So on long term capital gains from equity, the government gives us a free tax free limit of 1.25 lakh rupees. So the best way would be to rebalance it in a way that your long term capital gains in a financial year does not exceed the 1.25 lakh limit. So using that limit you can rebalance your portfolio in a tax efficient way.
All right, let's take a look at the next story. After five consecutive weeks of decline, domestic market sentiment is likely to be driven by global triggers, particularly developments in the West Asian conflict, commodity prices, foreign investors' activity, and currency movement in the holiday shortened week ahead. Investors will also focus on the industrial output data slated to release tomorrow for further cues. Markets will remain closed on the 31st of March on account of Mahavir Jayanti and on the 3rd of April for Good Friday. The current financial year 2025-26 will end on the 31st of March, and from the 1st of April, host of changes will take effect, including provisions related to the Income Tax Act 2025, which is aimed at simplifying compliance, reducing disputes, and making the provisions easier for taxpayers to understand. In the United States, investors will closely watch employment report alongside ongoing developments in the West Asian conflict, now entering its second month. Well, on that note, it's time for us to thank Akar for coming to our studios and answering questions related to mutual fund. And friends, before we wind up, here's a look at the headlines again. Prime Minister Narendra Modi says situation in West Asia has created challenging times for India's energy needs, expresses confidence nation will emerge victorious. Gold and silver prices display mixed trend last week. And domestic investors to focus on geopolitical developments, commodity prices and FII activity for queues next week. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Anija Dang, my co-anchor Subodh Mishra and our expert, Akar Rastogi, to sign off. So, namaskar.
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।